हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 टेक्स्ट नंबर 12 एंड 13। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं। इनको अध्ययन करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करते हैं, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साकृच्छातं सहगणरघुनाथपीठं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गारंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सूते देवी प्रणमामि हरि प्रे। वंचाकल्पतरुभयस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत गीता माते की जय हो। सातवां अध्याय जिसका शीर्षक है भगवत ज्ञान। इस अध्याय में भगवान ने अपने विषय में संपूर्ण सत्य का बताना उद्घाटन किया है उसका। इस सातवें अध्याय के पहले 3 श्लोकों में भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि आप मुझे केवल श्रवण करने से समझ सकते हैं। भगवान कहते हैं, मैया सत्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रया असंशयं समग्रम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे पांडव पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। यानी भगवान बता रहे हैं कि मुझे जानने की विधि क्या है, श्रवण करना। और आगे भगवान कहते हैं, ज्ञानम तेहम सभी ज्ञानम इदम वक्ष्याम तेहितम। वास्तव में यदि किसी ज्ञान से आपका हित हो सकता है, कल्याण हो सकता है, तो वो यह ज्ञान है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और यज्ञातवाने हभूयोन यज्ञातव्यम अवशिष्यते। इसको जानने के बाद इस भौतिक जगत में और कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाएगा। केवल यह ज्ञान परिपूर्ण है, परंतु भगवान बताते हैं कि हर किसी को यह ज्ञान सुलभता से प्राप्त नहीं होता है। भगवान कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतथामपि सिद्धानां कश्चन माम वेति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक ही सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और इस तरह से सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला कोई एक ही ऐसा होता है जो वास्तव में मुझे जान सकता है। उसके बाद इस अध्याय का दूसरा सेक्शन स्टार्ट होता है, श्लोक नंबर 4 से लेकर 12 तक। और इस सेक्शन में कृष्ण भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति के विषय में बताते हैं। भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 4, भूमिरापो नलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इति यम्ये भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार या आठ प्रकार की विभक्त मेरी भिन्ना यानी अपरा प्रकृतियां हैं। और नंबर 5 में अपनी आध्यात्मिक शक्ति के विषय में भगवान बताते हैं, अपरेयमितस्तन्यं प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूताम्य महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। और इसके बाद भगवान अनेक उदाहरण भी देते हैं कि हर एक वस्तु जो है वो इन्हीं भौतिक अपरा और परा शक्तियों के द्वारा हर एक वस्तु का निर्माण होता है। भगवान श्लोक नंबर 6 में बताते हैं, एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति पदारयः अहम् कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में से है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे है। मतलब भगवान अब ये बता रहे हैं कि वो हर एक वस्तु का स्रोत है। और भगवान बता रहे हैं कि ना केवल मैं हर एक वस्तु का स्रोत हूँ, परंतु मुझसे श्रेष्ठ तो कोई सत्य ही नहीं है। हर एक वस्तु मुझसे मुझ पर ही टिकी हुई है। भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 7 में, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ तो कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंधे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। भगवान बता रहे हैं, बहुत बहुत उदाहरण दे रहे हैं कि वो ना केवल हर वस्तु का स्रोत है, हर वस्तु के निर्माण कारक है, ना केवल समस्त वस्तुओं को मेंटेन करते हैं, बल्कि वो समस्त वस्तुओं का लाजमी जुज्व है। मतलब कृष्णा इज एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ ऑल थिंग्स। जो कुछ भी है वो भगवान के कारण है। हर एक वस्तु के होने के लिए भगवान के कारण ही हर एक वस्तु है, समस्त कारणों का कारण। ही इज द सेंस ऑफ एवरीथिंग। और भगवान ने बहुत सारे उदाहरण दिए। श्लोक नंबर 8 से लेकर भगवान बताना शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शक्तः कि पौरुषं दिशु हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। श्लोक नंबर 9 में भगवान बताते हैं, पुण्यो गंडः पृथ्वीयां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु ततश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ, और ना केवल मैं रस का जल का रस और पृथ्वी की सुगंध हूँ, परंतु समस्त जीवों का आदि बीज में हूँ। भगवान कहते हैं, बीजम् सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। और भगवान आगे बताते हैं, बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। यदि काम वो भी यदि धर्म के विरुद्ध नहीं है तो वो मेरा स्वरूप है। मतलब अगर वो काम कोई जीव करता है जो धर्म के विरुद्ध नहीं है तो उसको अपराध नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ से ये बात समझनी है कि यदि धर्म के नियमों के विरुद्ध है तो भगवान कहते हैं फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। फिर अपनी इंद्र तृप्ति के लिए जो आप काम वासना को पूरा करते हो उसके फल को भोगने के लिए आप स्वयं तैयार रहना। इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी काम वासना को पूरा करने की इच्छा जब होती है तो इस इच्छा को भी वो भगवान पर थोपते हैं कि हो सकता है भगवान की यही इच्छा हो। परंतु भगवान यहाँ साफ साफ सावधान कर रहे हैं कि वो काम जो धर्म के विरुद्ध ना हो, अर्थात विवाह के उपरांत संतान उत्पत्ति करने के लिए जो काम का उपयोग किया जाता है, भगवान उसको इतना पवित्र बताते हैं, कामोस्मि धर्म विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध ना हो, ऐसा काम नहीं हो। अर्थात भगवान ने साफ साफ बता दिया कि धर्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बगैर जो कार्य किया जाता है उसके लिए आपको खुद फल भोगने के लिए तैयार होना है। इन समस्त उदाहरणों को एक्सप्लेन करने के लिए अब श्लोक नंबर 12 में भगवान इस सेक्शन का कंक्लूजन बता रहे हैं कि हाउ ही इज ए सेंस ऑफ एवरीथिंग। वास्तव में इस श्लोक को समझना अत्यंत ही आवश्यक है और इस श्लोक में भगवान प्रीवियस श्लोक्स को समराइज कर रहे हैं। इसलिए इस श्लोक में भगवान प्रकृति के तीन गुणों के विषय में बता रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि ये भौतिक प्रकृति तीन गुणों पर आधारित है। गुण मीन्स क्वालिटी। भौतिक प्रकृति के तीन गुण हैं, तीन यानी कि भौतिक प्रकृति की तीन क्वालिटीज हैं, सत्व रजस तथा तमस। और इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है दैट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री गुणास, थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। जैसे तीन प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड ब्लू और येलो, और इस संसार के सारे रंग इन तीन कलर से मिलकर ही निर्मित होते हैं। उसी प्रकार इस भौतिक संसार में जो कुछ भी घटित होता है इन तीन गुणों के कारण हो रहा है। अब जैसे ये जो प्राइमरी कलर्स हैं रेड ब्लू और येलो, उनकी भी अपनी एक क्वालिटी होती है, उसी प्रकार तीन गुण सत्व रजस तथा तमस, इनमें भी हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। सत्व गुण ज्ञान को इनकरेज करता है, बुद्धि को इनकरेज करता है, सदाचार और पवित्रता को इनकरेज करता है, शुद्ध कार्य, शास्त्र अध्ययन और साधुओं के प्रति श्रद्धा को बढ़ाता है, हृदय में वैराग्य और शुद्ध कार्य करने से करके संतुष्टि प्राप्त होती है। ये सत्वगुण शुद्ध होता है, इसलिए इससे शुद्ध विचार आते हैं। तो यदि कोई अपने पिछले जन्मों के कारण इस गुण में स्थित होता है तो उसे ज्ञान, शुद्धता, वैराग्य और कार्य में शुद्धि प्राप्त होती है। रजोगुण भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उकसाता है। जैसे आजकल हम देखें तो सब लोगों को भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की कामना होती है, नाम कमाना, यश कमाना, धन कमाना, सम्मान, इसी के लिए कार्य करते हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं वो उनका वास्तविक लक्ष्य यही होता है कि संसार में नाम, यश, धन इत्यादि उसे प्राप्त हो। और जो रजोगुण में होता है वो सदैव ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की चेष्टा करता है। मतलब रजोगुण ऐसा गुण है जो जीव को कभी संतुष्ट नहीं होने देता, ये चाहिए, वो चाहिए। और कोई भी अगर तमोगुण में होता है तो निद्रा, आलस्य, सुस्ती, नशा, ये सब तमोगुण के सिम्टम्स हैं। यहाँ पर ये बात समझनी है कि कोई भी पूरी तरह से एक गुण से प्रभावित नहीं होता, तीनों गुणों का थोड़ा बहुत मिक्सचर तो होता ही है। जैसे कोई व्यक्ति यदि बहुत मात्रा में सत्वगुणी होता है तो भी कुछ कुछ रजोगुण उसके अंदर होता ही है, और यदि कोई व्यक्ति बहुत मात्रा में राजसी होता है तो थोड़ा बहुत तमोगुण भी उसके अंदर होता है, थोड़ा बहुत सत्वगुण भी होता है। मतलब इस भौतिक जगत के निर्माण के लिए ये तीन गुण ही कार्य कर रहे हैं। हर वस्तु के निर्माण के लिए तीन गुणों की आवश्यकता है। यहाँ तक कि अगर किसी जगह पर आप जाते हो यहाँ सत्वगुण प्रधान होता है तो वहां पर शांति होती है, सुकून होता है, आप बहुत संतुष्टि का अनुभव करते हो। अगर आप किसी बहुत बड़े शहर में जाते हो जहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति हर जगह स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कार्यशील होते हैं, तो रजोगुण वहां पर अधिक होता है, जहाँ लोग भौतिक आनंद के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं। और अगर कोई ऐसे वातावरण में आते हैं तो भले ही आप कितने ही सात्विक हों, रजोगुण अवश्य अटैक करता है आपको। और जो तामसिक वातावरण होता है, जैसे जहाँ पर शराब पिया जाता है, नशा किया जाता है, जुआ खेला जाता है, परिस्थिति संग किया जाता है, अगर कोई सात्विक की व्यक्ति भी रेगुलर ऐसे स्थान पर रहना शुरू कर देगा ना, तो फिर उसके ऊपर यह तमोगुणी अटैक अवश्य होगा। यहाँ तक कि जो भोजन हम खाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, भोजन खा रहे हैं, समय भी रजोगुणी और तमोगुणी और सत्वगुणी होता है। इवन हमारी श्रद्धा जो है वो भी सत्वगुणी और रजोगुणी और तमोगुणी होती है। इस चीज को भगवान आगे बहुत बहुत क्लियर करेंगे श्लोक अध्याय नंबर 17 में, थ्री मूड्स ऑफ मटेरियल नेचर में। मतलब यहाँ कहने का क्या अर्थ है, हर एक चीज पर ये तीन गुण असरअंदाज होते हैं। जैसे जानवर तमोगुण में होते हैं, मनुष्य रजोगुण में होते हैं और देवता सत्वगुण में होते हैं। परंतु कुछ जानवरों में भी, उनमें भी कुछ सत्वगुणी होते हैं, कुछ तमोगुणी होते हैं, कुछ रजोगुणी होते हैं। मनुष्य में भी कुछ रजोगुणी होते हैं, तमोगुणी होते हैं, और देवताओं में भी कुछ रजोगुणी होते हैं। मतलब ये गुणों का चक्कर इतना ज्यादा गहरा है, दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, उसको समझना अत्यंत ही कठिन है। संसार की हर एक वस्तु और हर एक व्यक्ति इन तीनों गुणों से बंधा होता है। गुण का एक मतलब तो क्वालिटी होता है, और उसी के साथ गुण का एक दूसरा अर्थ होता है रस्सी। ये गुण ऐसी रस्सी होते हैं जिनके द्वारा आत्मा जन्म मरण के बंधन में बंध जाती है। मतलब वो आत्मा जो कि भगवान का अंश है, जिसे भगवान के लोक में रहना है, उसका इस संसार में आकर पुनः जन्म लेना, पुनः मरना, पुनः जन्म लेना, पुनः मरना, ये गुणों के कारण हो रहा है। और जीव आत्मा अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाती है और आज कृष्ण हमें इन गुणों के विषय में बता रहे हैं। तो मेरे साथ साथ इस श्लोक नंबर 12 का उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवैति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। शब्दात् ये च एव, ये मतलब जो, च यानी तथा, एव यानी निश्चय ही, सात्विका भावा सत्वगुणी भाव, राजसा रजोगुणी, तामसा तमोगुणी, च ये भी जो, मत्त एवैति, मत्त मतलब मुझसे, एव निश्चय ही इति इस प्रकार, तान विद्धि इनको जानो, ना मतलब नहीं, तू यानी लेकिन, अहम यानी मैं, उनमें, तेषु यानी उनमें, ते मई वे मुझ में, यानी भगवान कहते हैं ये चैव सात्विका भावा, जो ये सात्विक भाव है, राजसा तामसा चाहिए, रजोगुणी भाव है, तमोगुणी भाव है, मत्त एवेति तान विद्धि, आप क्या जानो, ये सब मेरे द्वारा ही प्रकट होते हैं, न तो अहम तेषु ते मई, परंतु मैं स्वतंत्र हूँ, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, बल्कि वो मेरे अधीन है। अनुवाद, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सत्वगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो, एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु मैं स्वतंत्र हूँ, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझाए कि संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। जो कुछ भी हो रहा है उनका कारण स्वरूप ये प्रकृति के गुण हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं है। ये सब भगवान कहते हैं मत्त एवेति तान विद्धि, ये सब मेरे द्वारा प्रकट हुए हैं, न त्वं तेषु ते मयि, मैं उनके अधीन नहीं हूँ, बल्कि वो मेरे अधीन है। उदाहरणार्थ राज्य के नियमानुसार कोई दंड हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण भगवान कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसीलिए वे निर्गुण हैं। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत हैं, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। ये भगवान का विशेष लक्षण है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं, ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्चये, ये सब मेरे द्वारा ही प्रकट हुए हैं, मत्त एवेति तान विद्धि। उदाहरण अर्थ सत्व मतलब देवता जो सत्वगुण में स्थित होते हैं, तमोगुण में राक्षस स्थित होते हैं और रजोगुण में मनुष्य स्थित होते हैं, वो सब कृष्ण पर डिपेंडेंट है। मत्त एवेति, मुझसे ही प्रकट होते हैं। अर्जुन ये जान लो कि भले ही ये सब मुझसे प्रकट होते हैं परंतु ये सब मुझ पर डिपेंड है, दीज आर ऑल डिपेंड्स ऑन मी, परंतु तेषु ते मई, मैं उन पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, वो मुझ में है परंतु मैं उनमें नहीं हूँ। श्लोक नंबर 9.10 में भगवान बताते हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचर, ये प्रकृति मेरी इंस्ट्रक्शन से काम करती है परंतु हेतु नानेव कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, मैं इस प्रकृति पर आधारित नहीं हूँ जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, ये प्रकृति मेरे अधीन है और इसी के शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। ये प्रकृति इंडिपेंडेंट नहीं है, संसार की हर एक वस्तु इन गुणों के कंट्रोल में है और ये गुण मेरे कंट्रोल में है। भगवान कहते हैं तेषु ते मई, मैं इन गुणों को कंट्रोल में करने वाला हूँ। अब वास्तव में कृष्ण क्या बता रहे हैं कि संसार में जो कुछ भी परा और अपरा शक्तियां हैं वो मेरी ही शक्ति है और मेरी शक्ति के द्वारा ये सब कार्य हो रहे हैं, पर मैं उनके कंट्रोल में नहीं हूँ। नवे अध्याय के श्लोक नंबर 6 में भगवान बताते हैं यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधारय, जैसे वायु हर जगह पर होती है परंतु आकाश में स्थित होती है, हर एक जगह पर बहती है परंतु हर जगह होने के बावजूद भी, क्योंकि आकाश बहुत ज्यादा विशाल है, वायु उसके अंदर स्थित होती है। उसी प्रकार सर्वाणि भूतानि, जितने भी जीव हैं वो सारे जीव सारी वस्तुएं मत्स्थानि मुझ में है। मया ततमिदं सर्वं जगत व्यक्तमूर्तिना, अर्थात इस जगत की हर एक वस्तु को मैं कंट्रोल करता हूँ। नतेषु चाप्यहम्, परंतु इस संसार की कोई भी वस्तु या कोई भी गुण के कंट्रोल में मैं नहीं हूँ। भगवान कहते हैं भले ही मैं समस्त कारणों का कारण हूँ, हर वस्तु हर स्थान में मैं समाया हुआ हूँ, मैं हर वस्तु में भी हूँ, मैं हर वस्तु का स्रोत हूँ, हर वस्तु मुझ में है, परंतु फिर भी मैं अपनी भौतिक शक्ति से परे हूँ, मैं कभी भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, मतलब मैं अपनी इस शक्ति द्वारा कंट्रोल्ड नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं इन तीनों गुणों का स्वामी हूँ। इस प्रकार कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि उनका उनकी शक्ति से क्या संबंध है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने अत्यंत सुंदर एग्जाम्पल दी है कि जैसे एक राजा अपने राज्य का सुप्रीम अथॉरिटी होता है, राजा ही समस्त रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है किंतु वो स्वयं इन रूल्स में बंधा हुआ नहीं होता है। ये नियम तो प्रजा के पालने के लिए होते हैं, उसी प्रकार परम पुरुष भगवान इस जगत की सुप्रीम अथॉरिटी है, उन्होंने ये सारे नियम हमारे लिए बनाए हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, संसार के नियम भगवान के द्वारा बनाए जाते हैं परंतु भगवान स्वयं इन नियमों के द्वारा बाध्य नहीं होते हैं, उन्होंने ये नियम मनुष्यों के लिए बनाए। उसी प्रकार भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि ये सारे गुण उनके कंट्रोल में होते हैं पर वो उनके कंट्रोल में नहीं है, परंतु संसार के जो मनुष्य इन गुणों के द्वारा मोहित हो जाते हैं वो इस बात को नहीं समझ सकते। इस बात को भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 13 में समझाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न रेज हो रहा है कि क्योंकि यदि भगवान हर जगह है, हर वस्तु में है, हर वस्तु का स्रोत है, हर वस्तु का एसेंशियल प्रिंसिपल है, हर वस्तु उन पर आधारित है, तो हम उनको हर जगह देख क्यों नहीं पाते, जान क्यों नहीं पाते और उनकी शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? इस बात को भगवान अगले दो श्लोकों में अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। अब यहाँ से सातवें अध्याय का तीसरा भाग शुरू हो रहा है, जिसमें कृष्ण यहाँ ये बता रहे हैं कि यद्यपि वो हर वस्तु का स्रोत है, हर जगह हर कण में है, परंतु लोग उन्हें नहीं देख सकते, उन्हें जान नहीं सकते। नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति हर जगह है तो हमें दिखना चाहिए ना। अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पर हूँ, आपके सामने हूँ, तो आप बोलोगे कि अगर आप मेरे सामने दिख क्यों नहीं रहे हो, दिख नहीं रहे हो इसका अर्थ है कि आप यहाँ नहीं हो। इसी तरह लोग भगवान के बारे में भी कहते हैं कि अगर कृष्ण हर वस्तु हर जगह हर कण में होते तो दिखते, वो हमें दिख नहीं रहे हैं इसका अर्थ है वो नहीं है। इस बात का उत्तर भगवान देते हैं श्लोक नंबर 13 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अब यहाँ पर हर क्षण जो भगवान हर एक वस्तु में समाये हैं, हर एक जगह पर, संसार की हर एक वस्तु का स्रोत है, सृजन करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, फिर भी दिखते क्यों नहीं है, उसका उत्तर भगवान देते। भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 13, त्रिभिर्गुणमयैर् भावैः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेव्यः परमव्ययम्। त्रिभिर्गुणमयैर् भावैः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेव्यः परमव्ययम्। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेव्यः परमव्ययम्। शब्दार्थ त्रिभिर, तीन, गुणमय गुणों से युक्त, भावय भावों द्वारा, एभिः इन, सर्वम संपूर्ण, इदम जगत यह ब्रह्मांड, मोहितम मोहग्रस्त हो जाता है, ना भी जानाती नहीं जानता, माम मुझको, एभिः इनसे, परम परम हूँ, अव्ययम अव्यय या सनातन। अनुवाद, तीन गुणों अर्थात सत्व रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जान पाता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है। जो लोग इस संसार से तीन गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की चार श्रेणियां हैं। जो नितांत सत्वगुणी हैं, वे ब्राह्मण हैं। जो रजोगुणी हैं, वे क्षत्रिय हैं। जो रजोगुणी एवं तमोगुणी हैं, दोनों हैं, वे वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी हैं, वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं, वे पशु हैं। फिर ये उपाधियां स्थाई नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ, जो भी हो, यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है, तो हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे। किंतु माया के वश में होकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम इस प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों से गुणों के मूल हैं। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है। और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं, जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, यहाँ तक कि जो सत्तोगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही ब्रह्म स्वरूप से ही आगे नहीं बढ़ सकते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा हुआ है। जब सत्तोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ सकते तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी है। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे है, और जो लोग निस्संदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं, वे ही वास्तव में मुक्त हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अत्यंत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। और भगवान यहाँ पर इस बात का उत्तर दे रहे हैं कि हर वस्तु के सृजन करने, मेंटेन करने वाले होने पर भी, विनष्ट करने वाले होने पर भी, हर वस्तु का स्रोत होने के बावजूद, समस्त कारणों के आदि कारण होने के बावजूद भी, इज एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ एवरीथिंग, पर फिर भी वो हर जगह विद्यमान होते हुए भी लोग उनको नहीं देख पाते हैं। इसका कारण है प्रकृति के ये तीन गुण, क्योंकि ये यदि कोई इन तीन गुणों के द्वारा मोहित हो जाता है, मोहितम ना भी जानाति, मोहित हो जाता है, जिससे किसी जीव को यदि हिप्नोटाइज कर दिया जाता है या उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, तो उसके सामने विद्यमान वस्तु भी उसे नहीं दिखेगी। उसी तरह भगवान बताएंगे आगे 7.25 में, नाहम प्रकाशः सर्वत्र योग माया समावृता, मैं हर किसी को दिखता नहीं हूँ और योग माया द्वारा अच्छा दे देता हूँ। वो कहते हैं कि लोग मुझे नहीं देख सकते हैं, जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, क्योंकि उन मूढ़ों की, बेवकूफों की आंखों पर तो माया की पट्टी बंधी होती है। मूढ़ हो या ना भी जानाती, बेवकूफ होते हैं, उनको दिखता नहीं है और मैं अपनी माया द्वारा आच्छादित रहता हूँ। ना हम प्रकाश सर्वत्र योग माया समावता, मूढ़ोयम ना भी जानाती लोकमाम अजम अव्ययम। इसलिए तो मैं हर जगह पर दिखता नहीं हूँ, यद्यपि मैं शाश्वत हूँ, अव्यय हूँ, मेरा कभी क्षय नहीं होता, आई एम इटर्नल, परंतु लोग मुझे नहीं देख पाते हैं मेरी माया शक्ति के कारण। माया का मतलब होता है तीन गुणों के द्वारा मोहित हो जाना। ये भौतिक प्रकृति के जो तीन गुण हैं, वो हर किसी को मोहित कर देते हैं। संसार में हर एक जीव इस माया के द्वारा कंट्रोल्ड होता है, 100% कंट्रोल्ड। वो स्वतंत्र दिखता है, परंतु फिर भी वो स्वतंत्र नहीं होता है। वो स्वतंत्र इस रीति से है कि वो इच्छा करने में बिल्कुल स्वतंत्र है, परंतु माया इतनी शक्तिमान है कि ये गुण इतने बलवान हैं कि हम भले अच्छा करने का प्रयास भी करें, कोई इच्छा भी करें, परंतु ये गुण इतने बलवान होते हैं कि हम इनके अंदर कंट्रोल्ड होने के कारण हम कुछ और कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये माया है। जैसे किसी एक व्यक्ति पर किसी भूत का साया हो जाता है, फिर वो बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, क्योंकि वो इस भूत के वश में होता है, वो अपने वश में नहीं होता। उसी प्रकार ये तीन गुण जीव को इतना मोहित कर देते हैं कि जैसे इनके ऊपर किसी भूत का साया हो गया हो। वास्तव में भगवत गीता की वास्तविक शिक्षा क्या है कि हम सब आध्यात्मिक जीव हैं, प्रकृति के इन तीन गुणों से, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। हम तो आध्यात्मिक जगत में रहने के योग्य हैं। इस भौतिक जगत से हमारा कोई संबंध नहीं है, परंतु किसी कारण से हम इस भौतिक जगत में आ गए हैं, और जब आ गए हैं तो इस माया यानी तीन गुणों के द्वारा शिकंजे में फंस गए हैं, और इस माया के द्वारा मोहित होने के कारण हम अपनी वास्तविक पहचान को भूल गए हैं कि हम कौन हैं, ये संसार क्या है, इस संसार में हम दुखी और सुखी क्यों हो रहे हैं। हम ये भी नहीं जान पाते कि इन गुणों को बनाने वाला कौन है। हम ये भी नहीं जान पाते कि भगवान कौन है, भगवान के क्या गुण हैं, क्योंकि वो भगवान तो इन तीन गुणों से परे होते हैं। वो तो इन तीन गुणों के स्वामी हैं, वो इन तीन गुणों के कंट्रोल में नहीं है। इस बात को यहाँ पर भगवान बताते हैं। भगवान कहते हैं, त्रिभिर्गुणमयैर भावैः एभिः सर्वम् इदं जगत। ये पूरा जगत जो है वो इन तीन गुणों के द्वारा मोहित होता है। मोहितम ना भी जानाति, मोहित हो जाता है इसे नहीं जानता है। मामेभ्यः परम अव्ययम्, मैं परम हूँ, इन तीन गुणों से ऊपर हूँ और अव्यय हूँ। ये भौतिक जगत को भगवान ने कहा है गुणमयी, त्रिभिर गुणमयी, यानी ये तो तीन गुणों से भरा हुआ है। इस संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर ये तीन गुण ना हो। इसलिए भगवान बताते हैं, त्रिभिर गुणमयैर भावैः एभिः सर्वम् इदं जगत्। समग्र विश्व में ये तीन गुण ही कार्यशील हैं। तो इससे क्या होता है, कृष्ण से इस मोहितम, मोहितम का मतलब होता है कि हर जीव इन तीन गुणों के वश में आ जाता है। संसार के सारे जीव इन तीन गुणों की माया से 100% वश में आ जाते हैं। इन गुणों के कारण जीव विभिन्न कार्य करता है, वो अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैदिक शास्त्र में मनुष्य का विभाजन वर्ण शंकर आश्रम से किया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, जैसे श्री प्रभुपाद जी ने बताया है इस तात्पर्य में। परंतु लोगों के मन में ये धारणा गलत है कि वर्ण शंकर कास्ट सिस्टम है। मतलब यदि कोई ब्राह्मण परिवार के अंदर जन्म लेता है तो वो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय में जन्म, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वास्तव में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को ऐसे समझना चाहिए कि ये तीन गुण उस व्यक्ति पर किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। मतलब अगर कोई पूर्ण रूप से सत्व गुण में है तो वो ब्राह्मण है। यदि कोई पूर्ण रूप से रजोगुण में है तो वो क्षत्रिय है। यदि कोई रजोगुण और तमोगुण में दोनों में मिक्सर है तो वो वैश्य है, और यदि कोई तमोगुण में है तो वो शूद्र है। समझ में? तो जिस जीव पर ये गुण जिस प्रकार से कार्य करते हैं, मतलब हर जीव के और इन गुणों का जो प्रभाव होता है वो अलग होता है, और जीव इस तरह का कार्य भी करता है, इसी प्रकार वो सोचता भी है। बट अल्टीमेटली बात समझने की क्या है कि इस संसार में जो कुछ भी है वो सब टेम्पररी है। जैसे हमारा शरीर, चाहे हम ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों, शूद्र हों, वैश्य हों, इंडियन हों, एशियन हों, अमेरिकन हों, इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, हम जो कुछ भी हैं एक निर्धारित समय के लिए। जब मृत्यु आएगी तो हमारी आत्मा को हमारी देह से निकाल कर किसी अन्य देह में ट्रांसफर कर देगी। फिर हम अपनी पुरानी पहचान को भूल जाएंगे और हमारी एक नई पहचान बन जाएगी। और इस प्रकार ये माया का खेल सदा चलता है, और हम सदा माया के द्वारा मोहित होकर विभिन्न शरीरों में जाकर अपने आप को वही शरीर मानने लगते हैं। क्यों? केवल हमारी भौतिक पहचान बदलती है, लेकिन भौतिक पहचान बदलने के बावजूद भी आत्मा वही रहती है। ये जो पूरा साइकिल है, जैसे इस संसार में आना, एक जन्म लेना, फिर उसके अंदर सारे कार्य करना, और फिर वापस जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि के बाद वापस मृत्यु, मृत्यु के बाद पुनः जन्म, और फिर वापस से जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि के बाद मृत्यु, तो इसको संस्कृति कहा जाता है, संस्कृति। ये सब क्यों होता है? इसका वास्तविक कारण है हमारी इच्छाएं। सूक्ष्म शरीर को एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में भेज दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहाँ पर इस शरीर के कारण जीव अनेक अनेक इच्छाएं करता है। जीव की इच्छाएं अनलिमिटेड होती हैं। जीव के हृदय में जिस भी वो शरीर में जाता है तो उसके हृदय में बहुत सारी इच्छाएं जन्म लेती हैं, और ये इच्छाएं ही वास्तव में हमारे अगले जन्म का कारण बनती हैं। मृत्यु के समय भगवान बताएंगे आगे 8.5 में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमय व्यक्ति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। आप मरने के समय जिस जिस वस्तु का स्मरण करोगे वैसा ही आपको जन्म मिलेगा। इस प्रकार एक जन्म मिलता है, फिर उसको त्यागते वक्त जो कुछ सोच रहे होंगे, जो इच्छाएं होंगी, उसके कारण दूसरा जन्म मिलेगा, और फिर दूसरा जन्म मृत्यु के समय कुछ और सोच रहे होंगे तो कुछ और मिलेगा। तो इस तरह से अपनी इच्छाओं के जाल में फंसते हुए हम कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी असुर, कभी राक्षस, कभी जानवर, कभी परिंदे, कभी वृक्ष बनते रहते हैं। और इस प्रकार भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई हैं जिसमें हम घूम रहे हैं। देवता सत्वगुण में होते हैं, मनुष्य रजोगुण में होते हैं, जानवर और राक्षस तमोगुण में होते हैं। देवता जहाँ रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुख होता है, संतुष्टि होती है, और वो सदैव ऐश्वर्यमान जीवन गुजारते हैं। पशु सदैव डरते रहते हैं कि कहीं हमें पकड़ न लिया जाए, हमें कहीं मार न लिया जाए। तो मनुष्य जो होते हैं वो अधिकतर रजोगुण में होते हैं, क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को, इंद्र तृप्ति को ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। परंतु हम किसी भी शरीर में हो, हम इन गुणों से बच नहीं सकते। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें करना क्या चाहिए। हम जिस भी गुण में हैं उससे ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अभी यदि हम तमोगुण में हैं तो हम रजोगुण या सत्वगुण में खुद को ट्रांसफर कर सकते हैं। हम गुणों से बच नहीं सकते, परंतु यदि वातावरण और हमारी एसोसिएशन को चेंज कर देंगे तो फिर हम गुण को चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई लोग बहुत बहुत नशे की आदत में होते हैं, लेकिन यदि किसी अच्छे लोग का संग करते हैं तो नशे की आदत धीरे धीरे छूट जाती है। भले ही गुण सब जीवों पर कंट्रोल करते हैं, परंतु संग से और वातावरण से मनुष्य यदि प्रयत्न करे तो अपने गुणों को बदल सकता है। जैसे कोई तमोगुणी को सत्वगुणी व्यक्ति का संग मिल जाता है तो वो भी वैसे ही कार्य करने लगता है, परंतु यदि किसी सत्वगुणी को तमोगुणी का संग अगर वो करेगा तो वो भी बदल सकता है। यानी कि हमें देखना पड़ेगा कि कहीं हम तो अपने गुणों को चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब जिसका संग करें उसके अंदर इतना पावर हो कि वो हमें बदल सके, ना कि हम ही उसको तमोगुणी बना दें। फिर इस संसार में माया इतनी प्रबल है कि जो अच्छी क्वालिटीज है ना, जीव बहुत ही देर से ग्रहण करता है, लेकिन बुरी क्वालिटीज को, तमोगुण को, रजोगुण को बहुत जल्दी ग्रहण करता है। सत्वगुण यदि आप किसी को बोलोगे कि आप बैठ के भगवद गीता पढ़ो या भगवान के पवित्र नाम का जप करो तो वो उसको ज्यादा इफेक्टेड नहीं लगेगा। भले ही उसको समझ में भी आ जाए बात कि इसी से मेरा कल्याण होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद यदि उसको बताएं कि यदि आप ये कार्य करो तो महीने में 1 लाख रुपए पक्का फौरन से करना शुरू हो जाएगा। रजोगुण और तमोगुण जो है वो अपनी ओर बहुत ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। और कोई सत्वगुणी व्यक्ति भी यदि किसी रजोगुणी या तमोगुणी का संग करता है तो वो फिर ऐसा ही हो जाता है। फिर बहुत दिनों के बाद उसे याद आता है कि मैं पहले कितना अच्छा था, सत्वगुणी होता था, सात्विक व्यक्ति था, अब तो मैं शराब पीने लगा हूँ, नशा करने लगा हूँ, मुझे खुद को बदलना पड़ेगा, मुझे पुनः अपने सात्विक स्वभाव की ओर जाना पड़ेगा, परंतु अब बहुत देर हो चुकी होती है। भले ही वो वापस जाना भी चाहे, परंतु अब तमोगुण का आक्रमण इतना भयानक हो गया है कि वो चाहकर भी पुनः सात्विक गुण को नहीं एक्सेप्ट कर पाता है। अब इस कार्य के बंधन का कारण श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही दृष्टांत से दिया, बहुत ही सुंदर दृष्टांत है उसमें श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। वो दृष्टांत है एक रेशम के कीड़े का। जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपने मुख से एक धागा निकालता है और वह इस रेशम का कीड़ा स्वयं ही इस धागे के जाल में फंस जाता है और इस जाल को प्राप्त करने के लिए उस रेशम के जाल को गरम गरम बॉइलिंग वाटर में डाला जाता है तो क्या होता है, कीड़ा मर जाता है परंतु उससे वो धागा प्राप्त होता है। तो कोई सोच सकते हैं कि भाई कीड़े को निकाल लेना चाहिए, उसको बॉइलिंग वाटर में क्यों डाला जाता है? वो इसलिए क्योंकि यदि कीड़े को निकालना पड़ता है तो धागे को काटना पड़ता है और धागा अगर काटेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा और मार्केट में ऐसे धागे की वैल्यू नहीं होती। इसी प्रकार हमारे कर्म है वो इस सिल्क के धागे की तरह है। जिस प्रकार कीड़ा उस धागे के अंदर आकर मर जाता है, उसके अंदर इतनी योग्यता नहीं होती है कि वो उस जाल को काट सके, वैसे ही मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा बंधन में बंध जाता है। कर्म हर एक कार्य का प्रतिफल उसे भोगना पड़ता है। जैसे 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 जीव कार्य करता है उसी के अनुसार उसको बंधन 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 प्राप्त होते हैं और ये बंधन इतने भयानक हो जाते हैं कि वो अपने प्रयास से बाहर निकल ही नहीं पाता। वो भले कितना ही प्रयास करे असंभव हो जाता है उस जीव के लिए इस कर्मों की श्रृंखला से बाहर निकलना। और इस जाल से कैसे बाहर निकला जाता है वो भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। परंतु यदि हम विचार करें कि हमारे दुखों और बंधनों का कारण कौन है तो सब लोग दूसरे लोगों को ही दुखों का कारण बताते हैं। हर कोई बोलता है इसके कारण मुझे दुख मिला है, इसके कारण मुझे कष्ट मिला है, इस संसार में मैं दुखी हूँ, उसका कारण ये व्यक्ति ना होता तो मैं सुखी होता। परंतु वास्तव में ये सारे दुख और कष्ट हमें अपने ही कर्मों के फल के स्वरूप में मिले हैं। अदर पीपल्स आर सिंपली इंस्ट्रूमेंट्स हु डिलीवर्ड अवर कर्मास टू अस। अर्थात जो दूसरे लोग होते हैं वो तो केवल इंस्ट्रूमेंट की तरह है और हमारे कर्मों का प्रतिफल हमें भुगतने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं। वास्तव में जो कुछ दुख और सुख मिल रहा है वो हमारे अपने कर्मों के अनुसार मिल रहा है। और हम इन कर्मों की श्रृंखला से कैसे बच सकते हैं वो भगवान हमें दूसरे अगले श्लोक नंबर 14 में बताएंगे। तो कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी साधना और अपनी सेवा को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।